प्रिय श्रोता नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हैं और हमें विश्वास है कि आप सब आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से श्रेष्ठ गीत नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है प्रेम। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले प्रस्तुत है एक मधुर संगीत रचना।
संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, प्यारे प्रभु तू मेरे जीवन का सहारा। जब मैं भटक गया जीवन को तूने सहारा दिया, तुझसे जब मैं भटक गया जीवन को तूने सहारा दिया, अच्छा चरवाहा बन प्रभु मैं गाऊंगा तेरा वचन मैं सुनाऊंगा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने और उसमें से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से श्रेष्ठ गीत नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका लेखक सुलेमान है। और इस पुस्तक में हम देख रहे हैं प्रभु यीशु का प्रेम और कलीसिया का प्रेम, जो एक वर और वधु के रूप में दर्शाया गया है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और मधुर समय के लिए, जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन करें। आज जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, तो हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि हर एक जब आपके वचन को सुनता है तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन से बातचीत करने पाए। आज आप हमें अपने प्रेम को और भी गहराई से समझने में सहायता प्रदान करें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार अवस्था में हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं या किसी प्रकार के तनाव और दबाव में हैं, कर्ज से दबे हुए हैं। पिताजी, आप उन पर भी अपने अनुग्रह प्रदान करें, ताकि आज के इस अध्ययन के द्वारा वे अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सके। आज के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि यीशु खड़ा भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा है, परंतु हमने बीच में उदासीनता, परमेश्वर से विद्रोह और पाप की दीवार खड़ी कर दी है। अब हम उसके लौट आने का गीत देखेंगे। तो आइए आप मेरे साथ श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 2:10-13 को पढ़ें। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 2:10-13 में इस प्रकार से लिखा है, मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठ चली आ, क्योंकि देख जाड़ा जाता रहा, वर्षा भी हो चुकी और जाती रही, पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, चिड़ियों के गाने का समय आ पहुंचा है और हमारे देश में पिंडुक का शब्द सुनाई देता है, अंजीर पकने लगे हैं और दाखलताएं फूल रही हैं, वे सुगंध दे रही हैं। हे मेरे प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। यहां पर ध्यान दीजिए, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और उसके लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। उसने यह इसलिए किया कि वह एक दिन आकर कलीसिया को इस संसार से उठा लेगा। वह उसे अपने लिए पवित्र करके प्रस्तुत करेगा। हम सब विश्वासी को पवित्र बनाएगा। हम सब विश्वासियों को इस पवित्रता की आवश्यकता है। वह हमें जल के स्नान से वचन के द्वारा पवित्र करेगा। हमारे बाइबल अध्ययन का यही कारण है। वह अपने लिए एक महिमामय कलीसिया प्रस्तुत करना चाहता है, निष्कलंक और निर्दोष। इसी कारण वह कहता है कि हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ, क्योंकि देख जाड़ा जाता रहा, इस संसार में ठंडा है, वर्षा भी हो चुकी और जाती रही, तब जीवन की आंधियां शांत हो जाएंगी। मेरे मित्रों, क्या आप आज कठिन समय में हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16:33 में प्रभु यीशु ने साफ कह दिया है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, अतः परेशानियों में चिंतित न हो, यह आपकी पहचान है कि आप उसके हैं, आप उसकी संतान हैं, उसके आने पर सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, वह आपकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा, प्रत्येक दुखी मन को चंगाई प्राप्त होगी, उसकी उपस्थिति में सब दुख दूर हो जाएंगे, जाड़ा जाता रहा, वर्षा भी हो चुकी और जाती रही, पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं। यीशु आकर अपनों को उस सुंदर घर में ले जाएगा जो उसने तैयार करके रखा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वह फूलों का एक सुंदर बगीचा होगा। मैं सोचता हूं कि नए यरूशलेम में बहुत फूल उगेंगे। चिड़ियों के गाने का समय आ पहुंचा है और हमारे देश में पिंडुक का शब्द सुनाई देता है। चिड़ियों का गाना एक अति उत्तम अभिव्यक्ति है। जब हम प्रभु की उपस्थिति में होंगे तब व्यापक स्तुति गान होगा। मेरे मित्रों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सुसमाचार के वृतांतों के आरंभ में बहुत स्तुति गान है? डॉक्टर लुका अपने सुसमाचार वृतांत में यीशु के जन्म का उल्लेख करता है, तो अन्य सुसमाचार लेखकों से अधिक गहराई में जाता है। उसने स्तुति गानों का उल्लेख किया है, जकरिया का स्तुति गान, एलिशिबा का स्तुति गान, मरियम का स्तुति गान, हन्ना का स्तुति गान, शमौन का स्तुति गान। यीशु के जन्म से संबंधित अनेक स्तुति गान हैं। कलिसिया ने भजन गाना आरंभ किया, जिसके कारण रोमी साम्राज्य का ध्यान उनकी ओर गया। एक दिन हम उसकी उपस्थिति में होंगे और प्रभु के लिए एक नया गीत गाएंगे, क्योंकि उसने अद्भुत काम किए हैं। मैं आज तो गा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इस देह में गाने की उतनी योग्यता प्रदान नहीं की है, परंतु जब मुझे नई देह प्राप्त होगी तब मैं अवश्य ही परमेश्वर के लिए गाऊंगा। मैं एक नया गीत गाऊंगा, परंतु उस दिन तक मैं स्तुति में अपना मन उसकी ओर उठाऊंगा। चिड़ियों का गाना और फूलों की कलियां फूट निकलना हमें अपने उस ऋण का स्मरण करवाता है जो उसके उद्धार के प्रति आनंद से पूर्ण आभार व्यक्ति है। किंग विलमर्स ने अपनी कविता में लिखा, इस दमकते महिमामय राजा के लिए गाओ, हर जीवित प्राणी उसके नाम की स्तुति गाएं, हृदय और वाणी चांदी से बजने लगे कि यह दिन शांति लाया है। कुछ पुराने बाइबल संस्करणों में लिखा है, छटनी का समय, चिड़ियों के गाने का समय ही वह समय होता है जब अंगूर की छटनी की जाती थी। इब्रानी लेखक फलोत्तान के लिए पेड़ की छटनी और सुंदरता से प्रभावित गीत को एक ही प्रकार व्यक्त करते थे, जिस कारण यह समझना कठिन था कि उसका अभिप्राय गाने से है या छटनी से। दाखलता की छटनी करना ही यीशु ने कहा उसका मुख्य उद्देश्य था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 1-2 पद में लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। मेरे मित्रों, आप और मैं छटनी के समय में वास कर रहे हैं, परंतु गाने का समय अभी आने वाला है। यह कैसा अद्भुत दृश्य है! हमारे देश में पिंडुक का शब्द सुनाई देता है। पिंडुक को आज हम फाकता कहते हैं, जिसे उस युग में शांति का प्रतीक माना जाता था, क्योंकि नूह जब जहाज में था तब पिंडुक जैतून का पत्ता लेकर के आई थी, अर्थात परमेश्वर का दंड समाप्त हो गया है और अब सर्वत्र शांति है। पिंडुक हमारे सिद्ध उद्धार का भी द्योतक है, क्योंकि परमेश्वर का दंड भोगा जा चुका है। प्रभु यीशु ने हमारा दंड अपने ऊपर ले लिया था। मुझे अपने कारण उद्धार प्राप्त नहीं है, मेरा उद्धार परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। मित्रों, आपके पाप या तो आप पर हैं या प्रभु यीशु पर हैं। यदि आपके पाप आप पर हैं तो आपको न्याय के लिए खड़ा होना होगा। यदि आपने प्रभु यीशु को विश्वास करके अपना लिया है तो आपके पाप अब उसी पर हैं और आप दंड से बच गए हैं। विश्वास के द्वारा आप उद्धार पाते हैं। पिंडुक प्रभु यीशु द्वारा हमारे लिए उपलब्ध शांति का प्रतीक है। यही कारण है कि कुछ पवित्र जन ही प्रभु से उस समय भेंट नहीं करेंगे जब कलीसिया इस संसार से हटाई जाएगी। कुछ लोगों का मानना है कि केवल ढोंगी लोग ही उठाए जाएंगे। तथापि प्रत्येक विश्वासी की आशा यही है कि जब वह अपनी कलीसिया को लेने के लिए आए तब वह भी उसके साथ जाए। हम उसके साथ इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हम एक अति महान संत हैं, परंतु इसलिए कि उसने अपने क्रूस के लहू के द्वारा शांति स्थापित की है, जिसका प्रतीक पंडुक है। जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पंडुक सुबह सुबह सबसे पहले नए दिन की घोषणा करती है। मुझे आइजेक वाट्स की अभिव्यक्ति अति मनभावन लगती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने श्रेष्ठ गीत की पुस्तक के अध्ययन पर बहुत अध्ययन किया था। कहता है, ठंड जा चुकी है, कोहरे का अंत हुआ, बसंत उभर आई, पवित्र पंडुक की वाणी नया आनंद का वर्ष लाई, और प्रभु कहता है, मेरे प्रिय उठ आ जा, हमारे मन हवा को पार करके सांसारिक आनंद का त्याग करते हैं। हम आगे देखते हैं, अंजीर पकने लगे हैं और दाखलताएं फूल रही हैं, वे सुगंध दे रही हैं, यह बसंत ऋतु के चिन्ह है। हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4:16 में लिखा है, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:2-3 में यीशु कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। हम आगे देखते हैं कि पहाड़ की दरारों में कबूतरी। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 2:14 में लिखा है, हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। यही भजनकार ने भी कहा है भजन संहिता 74:19 में, अपनी पंडुकी के प्राण को वन पशु के वश में न कर। क्या प्रभु हमें मुक्ति दिलाएगा? हमें क्या कहा गया है कि वह हमें चट्टान की दरार में छिपा लेगा? चट्टान प्रभु यीशु का प्रतीक है, उसी चट्टान पर कलीसिया का निर्माण किया गया है। उसने हमारा दंड उठा लिया और हम उसमें विश्राम पाते हैं। इससे हमें संतोष ही नहीं, सुरक्षा भी प्राप्त होती है। मेरे प्रियो, यदि आप आज चट्टान पर हैं तो आप सुरक्षित हैं। यदि आपको उसके आश्वासन का बोध नहीं हो रहा है तो भी आप सुरक्षित हैं। एक महिला अपने उद्धार के विषय महान आश्वासन के साथ चर्चा कर रही थी, तो किसी ने उससे कहा, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप चट्टान पर सुरक्षित और निश्चिंत हैं। उसने कहा, मैं हूं, कभी कभी मैं चट्टान पर कांपने लगती हूँ, परंतु चट्टान मेरे नीचे नहीं कांपती। पंडुक पवित्र आत्मा का प्रतीक भी है। वह पंडुक की नाई उस पर उतरा था। वे सब जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, उनमें उस पवित्र आत्मा का वास है। रोमियो की पत्री 8:9 में पौलुस कहता है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। सच्चे विश्वासी अपने सीधेपन और अपनी दीनता में पंडुक के समान हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 10:16 में हमारा प्रभु कहता है, सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। मेरे विचार में पंडुक एक मूर्ख पक्षी है। एक दिन एक पंडुक मेरी गाड़ी से टकरा कर गिर गई। वह मार्ग से हटने के स्थान पर वहीं खड़ी रही जब तक कि वह मेरी गाड़ी से दब न गई। हमें कबूतर की नाई भोले तो होना है, साथ ही सर्प की नाई चतुर भी होना है, नहीं तो हम कुचल दिए जाएंगे। मेरे मित्रों, वह एक कायर पक्षी भी है। होशे की पुस्तक 11:11 में परमेश्वर ने कहा, वे मिस्र से चिड़ियों के समान और अशुर के देश से पंडुकी की भांति थरथराते हुए आएंगे, और मैं उनको उन्हीं के घरों में बसा दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। पंडुक को चट्टान की दरार में छिपने का स्थान चाहिए होता है। मसीह यीशु हमारे लिए घायल किया गया और घायल किए गए चट्टान का एक अति उत्तम चित्रण भी है। किसी ने कहा, मैं मसीह के मन में भाले के घाव के स्थान से प्रवेश करता हूँ। हम आगे देखेंगे छोटी लोमड़ियां। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 2:15 में लिखा है, जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। बाड़ा लगाकर बड़ी लोमड़ियों से तो बचाव हो जाता है, परंतु छोटी लोमड़ियां भीतर घुसकर अंगूर और नई दाख लताओं को हानि पहुंचाती हैं। ये लोमड़ियां पाप और हानि पहुंचाने वाले मनुष्यों का प्रतीक है। यूहन्ना ने दोनों का ही पर्दाफाश किया है। पाप के विषय में उसने कहा, लूकार्ची सुसमाचार 3:11, 13, 14 में, जिसके पास दो कुर्ते हो वह उसके साथ, जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना, किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना, और अपने वेतन पर संतोष करना। इसके बाद यूहन्ना ने हेरोदेश पर भी उंगली उठाई। यीशु ने उसे लोमड़ी कहा था, लूकार्ची सुसमाचार 13:32 में। उसने कहा कि किसी की पत्नी को अपने घर लाना अनुचित है। इस पर क्रोधित होकर हेरोदेश ने उसका सिर कटवा दिया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सिर। खरी बात करने से प्रचारक नाम नहीं कमाता है। आज कलीसिया में हानि पहुंचाने वाले वही छोटी लोमड़ियां हैं, वही छोटे पाप विश्वासियों की संगति को और मसीही जीवन को हानि पहुंचाते हैं। एक उदाहरण है भलाई न करना। याकूब कहता है 4:17 में, जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए वह पाप है। यही वह छोटी लोमड़ी है। हम प्रायः देखते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा में कुछ कर सकते हैं, परंतु उसे ध्यान नहीं देते। हम प्रायः ऐसा पाप करते ही रहते हैं। वचन कहता है कि यीशु भलाई करता रहा है। मेरे मित्रों, कितनी बार हम पत्र लिखना चाहते हैं परंतु लिखते नहीं। इसी प्रकार हम मसीह प्रचार कार्य में कुछ सहयोग भी देना चाहते हैं परंतु देते नहीं। हमें किसी के लिए प्रार्थना करना हो तो भी हम प्रार्थना नहीं करते। हमें शमूएल के शब्दों का स्मरण होता है, 1 शमूएल की पुस्तक 12:23 में, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। यह भलाई न करने के छोटे पाप हैं। ये ही तो छोटी लोमड़ियां हैं जो दाख की बारी को हानि पहुंचाते हैं। रोमियो की पत्री 14:23 में भी छोटी लोमड़ियां हैं। जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। कितनी बार हम अपनी इच्छा से कदम उठाते हैं और कहते हैं कि वह विश्वास है, जबकि हम जानते हैं कि वह विश्वास नहीं है। हम केवल अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। यह पाप है। मेरे मित्रों, यह छोटी लोमड़ी है। वह परमेश्वर के काम को हानि पहुंचाती है। हम टूटे हुए सरकंडे का सहारा लेने की मानसिकता रखते हैं। हम उसके सहारे पर खड़ा होना चाहते हैं और पवित्रता का दिखावा करते हैं। हम कहते हैं कि हम परमेश्वर की अगुवाई में ऐसा कर रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि यह सच नहीं है, परंतु कितनी सरलता से हम कहते हैं। रोमियो की पत्री में लिखा है कि जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। याकूब की पत्री 2:9 में एक और छोटी लोमड़ी है, यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। मेरे साथ एक बार ऐसा ही हुआ था। मैं किसी कलीसिया में आराधना के लिए गया। मैं नहीं चाहता था कि मुझे कोई पहचाने। मैं केवल प्रचार सुनना और वहां पर बैठना चाहता था। जब मैंने द्वार के भीतर कदम रखा तो सेवक ने बड़े अपमान से मुझे कहा कि मैं वहीं रुक जाऊं, और फिर आकर उसने कहा कि मेरे लिए वहां कोई भी जगह खाली नहीं है, और मुझे पीछे खड़ा कर दिया। फिर अचानक ही चौंका और कहने लगा, मुझे क्षमा करना, मैं आपको पहचाना नहीं था। मैं अभी आपके लिए कुर्सी लेकर आता हूँ। बड़े दुख की बात है कि कलीसिया में बड़े आदमी को, पैसे वाले को सम्मान दिया जाता है, और किसी गरीब को, चाहे वह धर्मी हो या ना हो, उसे अनदेखा किया जाता है। यह एक और छोटी लोमड़ी है जो आज परमेश्वर के काम को हानि पहुंचाती है। मेरे मित्रों, एक और छोटी लोमड़ी है सहर्ष दान न देना, पैसा नहीं देने की मानसिकता, दान देने में दिखावा करना। हम गीत गाते हैं, यीशु को मैं सब कुछ देता हूँ, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, और दान में एक रुपया या पांच रुपया डालते हैं। इसका अर्थ है कि हम झूठा गीत गा रहे हैं। मेरे प्रियो, ये छोटी लोमड़िया आज अंगूर को नाश कर रही है, हमें परमेश्वर की निकटता में आने से रोक रही हैं। आज मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में कौन सी लोमड़िया बसी हुई हैं। आप अपने जीवन को भली भांति जानते हैं। यदि आज आपके जीवन में भी ऐसी लोमड़िया हैं, तो प्रभु से कहें कि आप मुझे इससे बचाएं, छुटकारा दें। दान ना देना, ईर्ष्या करना और किसी को क्षमा ना करना, जो कार्य करना चाहिए उसको ना करना, ये सब छोटे लोमड़ियों के काम है। मेरे प्रियो, आइए आज हम अपने जीवन को इस वचन के प्रकाशन में देखें और प्रभु से कहें कि आप मेरी सहायता करें। आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में नई बातों को सीखा है, और प्रभु की संगति में आप अवश्य ही आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
यीशु के नाम में शिफा है,
शिफा है, शिफा है, शिफा है।
यही कलाम में लिखा है,
लिखा है, लिखा है, लिखा है।
यीशु के नाम में शिफा है,
शिफा है।
यही कलाम में लिखा है,
लिखा है।
यीशु से शैतान हारा है,
हारा है।
यीशु ने उसको मारा है, यीशु ने खून बहाया है, यीशु ने हमको बचाया है, यीशु ने हमको बचाया है।